दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार यथाह अगनत अतोलय ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलय। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप चवर तखत के मालिक कलयुग के जहाज शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी अभी अभी आप बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। कलयुग में कीर्तन प्रधान है। इस कलयुग में जबकि मनुष्य बहुत परेशान है, चिंतित है, लोग आजकल डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे समय में गुरु के चरणों में बैठकर कीर्तन सुनने से डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन शांत होता है और हरि की कथा सुनने को मिल जाए तो मनुष्य का जीवन आनंद से भर जाता है। हरि की कथा सुनने का फल है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, जीवन हमें गुरु देता है और जीवन हरि की कथा सुनने से मिलती है। जैसे जैसे कथा सुनते हैं हम हरि की, वैसे वैसे हमें गुरु की समझ प्राप्त होती है और समझ पड़ी हो तो भी सरी होगा। जब हमें गुरु की समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग जब मनुष्य को होता है तो उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है, उसके अंदर प्रकाश प्रकट होता है। साध संगत जी, जैसा कि आप लोग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन पवित्र वाणी श्लोक सहज कीर्ति, जिसकी कथा आप लोग लड़ी बार सुन रहे हैं, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश करते हैं दानं परापूर्वेण भुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्धियंग मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते। सत्संग जी बड़ा ध्यान से सुनना, गुरु महाराज का एक एक शब्द। दानंग परापूर्वेण भुंचन्ते महीपते, पूर्व जन्म के दिए हुए दान और शुभ कर्मों के कारण मनुष्य इस जन्म में मही पते, मही कहते हैं धरती को, पते मने राजा, और राज पदवी को पाता है। दानंग परापूर्वेण भुंचन्ते मही पते, पूर्व जन्म के दिए हुए दान और शुभ कर्मों के द्वारा इस जन्म में मनुष्य राजा की पदवी को प्राप्त होता है। लेकिन जब राज पदवी मिल जाता है तो मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और प्रजा को दुख देते हैं, सताते हैं, अन्याय करते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी बुद्धि हो जाती है। विपरीत बुद्धिंग मार्त लोक है, इस मात लोक में उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो क्या होता है? नानक चिरंकाल दुख भोगते, फिर वो बहुत लंबे समय तक दुख को भोगता है। एक कहावत भी है, तपो राज राजो नरक। पूर्व जन्म की तपस्या से इस जन्म में राज्य मिलता है, राजा बनता है आदमी। जिसके घर में बहुत धन है, जिसको बहुत मान मिल रहा है, उसने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ शुभ कर्म किया है, लेकिन बहुत धन पा करके, जवानी को पाकर, बुद्धि को पाकर, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अहंकार उसके मन में ना, पद रूप जवानी ये सारे जो है अनर्थकारी कहा है, अनर्थकारी एक एक, और जिसके पास सारे रहें तो फिर कहना ही क्या है। दानंग परापूर्वेण भुंचन्ते महीपते, विपरीत बुद्धिंग मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते। पहले हम ये समझें के दानंग, दान कहते किसको है। दान का भाव है देने की भावना। आप क्या दे रहे हैं वो उतना महत्व का नहीं है, आप किस भावना से दे रहे हैं ये ज़्यादा महत्व का है। और जेहा बीजय सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत, कीता पाये आपना सा घाल बुरी क्यों घाली। ये निश्चित है, एक नियम है प्रकृति का कि इस प्रकृति को हम जो देंगे प्रकृति मुझे अधिक करके लौटा देता है। एक हम कांटे बोते हैं किक्कर का बीज, हमको हजारों कांटे मिलते हैं। एक आम का बीज इस धरती में बोते हैं, समा पाके हमको हजारों आम मिलते हैं खाने। इसी तरह से यदि हम निंदा करते हैं, वैमनस्य करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तो हमको हजारों गुना ज़्यादा निंदा, हजारों गुना ज़्यादा दुख, हमारे जीवन में हजारों गुना ज़्यादा कांटा हो जाता है, आज हो या कल। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, पर का बुरा ना रखो चीत। किसी भी हाल में किसी का बुरा नहीं सोचना है, ये पक्की बात है। जो करोगे तुम मन से, वाणी से, हाथ से, धन से, वही चीज़ें तुम्हें अधिक होकर के मिलेगा। एक समय की बात है, एक राजा बहुत धर्मात्मा था और उसके राज्य में कई एक साल से कोई अनाज पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। और पहले के लोग भारत में जो बारिश के ऊपर ही लोग डिपेंड रहते थे, कोई बड़े बड़े ट्यूबवेल या नहर की इतनी व्यवस्था नहीं थी। हुआ क्या, राजा बड़ा दुखी, क्योंकि वो प्रजा के दुख को देख के नहीं रह सकता था। उसने सिमरन किया, बंदगी किया, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना किया, सच्चे पातशाह मेरा प्राण ही क्यों न ले ले, लेकिन ये प्रजा दुखी ना हो। कहते हैं उस वक्त भविष्यवाणी हुआ, राजन ऐसा करना, कल सुबह सुबह अमृत वेले उठ करके जाना, और जो व्यक्ति सामने से आए उसके आगे हाथ पसार देना, और जो मिले उसको तुम खजाने में डाल देना, दूसरे दिन से खजाने में सब कुछ बढ़ने लग जाएगा, जो इच्छा करोगे वो पूरा होगा। भविष्यवाणी के अनुसार राजा ने दूसरे दिन सुबह उठ करके अमृत वेले ही अपने रथ पर जा रहा है। उधर से एक भिखारी आ रहा था, हाथ में कटोरा लिया हुआ, शरीर में फटे चिटे कपड़े, बाल बिखरे हुए। पहला जो है सो नज़र राजा को उसके ऊपर पड़ा। राजा ने रथ से उठ करके उसके पास जाने लगा। वो भिखारी सोचता है कि आज हमारी लॉटरी निकल गई, आज सुबह सुबह राजा स्वयं आ रहा है मेरे पास, पता नहीं आज क्या कुछ नहीं मिलना है। आशाओं से भर गया। इतने देर में ही जैसे ही राजा नज़दीक पहुंचा, राजा ने हाथ पसार दिया उस भिखारी के आगे, कुछ दे दो मुझे। जिस आदमी ने कभी दिया ना हो और उसके लिए कुछ देना, वो मौत जैसा होता है। देना कोई साधारण काम नहीं है, देना कोई साधारण काम नहीं है। लोग तो अपने फटे कपड़े, जो ना काम की चीज़ है, वो भी देने में 20 बार सोचते, शुभ विचार देने में भी कंजूसी करते हैं, लोगों को गलत राह पा देते हैं। आज राजा भिखारी के सामने हाथ पसारा, भिखारी के ऊपर पहाड़ का टूट पड़ा। देना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अपनी झोली से, चावल था झोली में, उसमें से एक दाना चावल का निकाल करके राजा के हाथ में डाल दिया। राजा ने एक चावल लेकर के अपने रथ के ऊपर बैठा और थैंक यू करके चला गया। राजा ने उस चावल के दाने को अपने खजाने में रख दिया। यह भिखारी जब शाम को घर लौटा भीख मांग करके, तो पत्नी को झोली दिया और कहता, भगवान आज चावल दाल बनाओ। पहले की स्त्रियां जो है थाली में चावल लेकर के एक एक करके देखती थी कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो। उसकी पत्नी, भिखारी की पत्नी ने थाली में चावल को देख रही है, एक एक करके देखती क्या है, एक चावल जो है सोने का है। बड़ा आश्चर्य हुई, अपना पति जो भिखारी था उसको कहती है कि आज आपने कहाँ दान मांगे, एक चावल सोने का है। उसी वक्त भिखारी के मन जो है, मन में ये बात आई कि एक चावल हमने राजा को दिया था, उसके बदले परमात्मा ने हमें एक चावल सोने का दिया है, मैं कितना अभागा यदि मैं झोली ही चावल का दे देता, आज झोली ही मेरा सोने का भर जाना था। साध संगत जी, कहने का भाव मात्र इतना ही है, कोई भी व्यक्ति इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, हमारे अपने ही शुभ कर्म सुख बन के आ जाते हैं और हमारे ही दुष्कर्म दुख बन के आ जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। और आत्मा का ज्ञान क्या है, जो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जा के कंचन माटी में, ये दोनों चीज़ों से ऊपर उठ जाता है आत्मज्ञानी। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं, दानं परापूर्वेण भुंचन्ते महीपते। पूर्व जन्म में शुभ कर्म और दान देने के कारण इस जन्म में व्यक्ति महीपते पृथ्वी का राजा बन जाता है और सुख भोगता है भुंचन्ते। लेकिन जब राजा बन जाता है, पद में पहुंच जाता है, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। हमने भी अपने जीवन में देखा है, बहुत से लोग जब वो पद पर नहीं था, बड़ा जीवन पवित्र था, सच के मार्ग पर चलता था, नम्रता हर एक चीज़ें, जैसे ही कोई पद मिल गया, टोटली चेंज, टोटली। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, विपरीत बुद्धिंग मार्त लोक है, जैसे ही वो राजा बनता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अहंकार आ जाता है और उस अहंकार के कारण तरह तरह के पाप करते हैं, नानक चिरंकाल दुख भोगते। एक समय की बात है, रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे तो एक कीड़ी दीवाल के ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा था। उसका पिछला जो दो पांव था कीड़ी का, वो टूटा हुआ था। वो बार बार कीड़ी चढ़ता है, गिर जाता है, थोड़ा दूर चढ़ता है, गिर जाता है। भगवान राम देखते हैं, देखते रहे, काफ़ी देर तक गौर से देखते रहे, आधा घंटा तक वो बार बार चढ़ता है, गिर जाता है, चढ़ता गिरता है, चढ़ नहीं पाता ऊपर दीवार। भगवान राम देख के हंसने लग पड़े। वहाँ पर मंत्री लोग और सारे लोग विनती किया कि भगवान आप बताएं आपने हंसे क्यों, और ये भी देख रहा हूँ कि उस कीड़ी को देख करके हंसे हैं, क्योंकि आपकी निगाह बार बार उधर जा रही थी। कहते हैं मैं इसलिए हंसा हूँ कि ये 14 बार इंद्र बन चुका है, ये 14 बार इंद्र रह चुका है, और इंद्र वो बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। एक अश्वमेध यज्ञ करने में कहते पृथ्वी की संपत्ति खाली हो जाती है, और 100 बार। ये 14 बार इंद्र बन चुका है, लेकिन विपरीत बुद्धिंग ये बन करके इसने ऐसे पाप किए हैं, विपरीत बुद्धिंग मार्तलोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते, आज ये दुख भोग रहा है, ये दीवाल इससे नहीं चढ़ा जा रहा है। 14 बार इंद्र रहा हुआ व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति पद को पाकर कुछ पा करके घमंड ना करे, पता नहीं हमारे साथ कल क्या होना है। नदर उपठी जे करे सुल्ताना घाव कराइंदा, दर मंगन भीख ना पाइंदा। इसलिए हमेशा पाप कर्मों से डरना चाहिए। साध संगत जी, जिन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी हम लोग मना रहे हैं, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनकी पावन पवित्र वाणी की कथा आप लोग सुन रहे हैं, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी 1563 में इस धरती पर उनका आगमन हुआ, 15 मई, और ये 3 भाई थे। बड़ा भाई पृथ्वीचंद, दूसरा महादेव, और आप सबसे छोटे थे। पिता साहेब श्री गुरु रामदास जी और माता बीबी भानी जी। कहते हैं कि जननी जनैता भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ऐसी माता जो शायद हिस्ट्री में पहली माँ है, बीबी भानी जी, जिनके पिताजी गुरु, जिनका पति गुरु, जिनका पुत्र गुरु, जिनका पोता गुरु, जिनका पर पोता गुरु, और उसके आगे फिर उनका भी लड़का, ये हिस्ट्री में पहली माँ ऐसे हुई। इतनी सौभाग्यशाली माता के पुत्र साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी इस धरती पर उस वक्त प्रकट हुए जिस वक्त अंधकार ही अंधकार था, जुल्म ही जुल्म हो रहा था, जुल्म ही चारों तरफ। सात संग जी, साहेब श्री गुरु रामदास जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए नहीं पुत्र के नाते, तो पुत्र तो तीनों ही थे, लेकिन पृथ्वीचंद जो था उसका एक ही मकसद जीवन में रहा है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खा पियो मौज उड़ा, और धन इकट्ठा करने के लिए, पद के लिए कोई भी कुकर्म करना पड़े तो कर ले। दूसरा महादेव जी, वो विरक्त महात्मा थे, वो संसार से कुछ लेना देना नहीं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये पिता को हमेशा गुरु रूप में जाने, गुरु रूप में। कहते हैं एक बार साहिब श्री गुरु रामदास जी के ताया का लड़का का शादी था लाहौर तरफ, तो वो निमंत्रण देने के लिए आए कि आप चलें शादी में। तो साहिब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, देखो यहाँ पर संगत को छोड़कर मुझे शादी में जाना संभव नहीं है। फिर उन्होंने बेनती किया कि आप अपने पुत्रों को भेज दें। जब पृथ्वीचंद को कहा, पृथ्वीचंद हमेशा इनकार, कभी आज्ञा का पालन ही नहीं करता था। एक बार सिर्फ साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी को कहे, उसी वेले तैयार हो जा रहे हैं। साथ में ये परीक्षा लेने के लिए साहिब गुरु रामदास जी कहते हैं, जब तक ना बुलाऊं आना नहीं। बहुत समय हो गया, कोई समाचार नहीं आया, तो एक पत्र लिखे अपने पिताजी को, दूसरे लिखे, कोई जवाब नहीं आया। तीसरा पत्र में लिखते हैं, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, विलप करे चात्र के, और उसके हाथ भेजे कि ये गुरु महाराज के हाथ में देना पत्र। और जब गुरु महाराज ने पत्र को पढ़े तो कहते हैं उनके आँखों से आंसू आ गए। और उसमें ये भी लिखा था, दो पत्र पहले भी लिखा हूँ। उसी वेले पृथ्वीचंद को बुलाया। पृथ्वीचंद कहता, नहीं मेरे कोई पत्र, मुझे कुछ पता नहीं। जब उसके कमीज को लाया गया तो उसके कमीज में दो पत्र निकले, वही ऐसा झूठा था वो पृथ्वीचंद। सात संगत जी, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी अभी बहुत ही छोटे ही थे, बहुत ही छोटे, अभी बालक ही थे। तो एक बार रिड़कते रिड़कते बीबी भानी जी ने एक गेंद लीर का बना करके उनको खेलने के लिए दिए थे। साहेब श्री गुरु अमरदास जी, नाना जी, कमरे में बैठकर तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, दरवाज़ा बंद था। वो गेंद रिड़कते रिड़कते कमरे में चला गया। अभी बहुत ही छोटे हैं गुरु अर्जन देव जी, मसा खड़ा भी नहीं हो पाते ठीक से। कहते हैं पहले कोशिश किए दरवाज़ा खोलने का, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर दरवाजे को पकड़ के खड़े हो गए, मत्थे से जोर लगाए खोलने का नहीं खुला। तो कहते हैं एक पांव को जमीन में लगाए और दोनों हाथ से खोल दिए, और खोल करके जब अंदर गए, कहते हैं साहिब श्री गुरु अमरदास जी ये सारा कौतक देख रहे थे। बीबी भानी जी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी पिताजी ये बालक शरारती हो गया है, आप माइंड ना करें जो है सो, आपका दोस्त। वहाँ पर भविष्यवाणी करते हैं साहिब श्री गुरु अमरदास जी, बचिए तो चिंता ना कर, आज इसने धर्म, ये जो अंधकार था उसको दूर किया है, प्रकाश किया है इसने, ये दरवाज़ा नहीं खोला है। जो लोग जुल्म कर रहे हैं उसको खात्मा करने के लिए, समाप्त करने के लिए इसने एक रास्ता बना रहे हैं। धर्म की नींव जो है सो ये रख रहा है। ये समय आएगा कि सारे जुल्म को ये समाप्त करेगा। सात संग जी कहते हैं एक बार साहिब श्री गुरु अमरदास जी मंजे पर बैठे थे। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी रिड़कते रिड़कते मंजे को पकड़ करके ऊपर बैठने की कोशिश की, और कहते हैं जब मंजा पकड़े ना, मंजा हिल गया चारों तरफ। गुरु अमरदास जी कहते हैं ये कौन वड्डा महापुरुष है, ये कोई बड़ा भारी महापुरुष जिसने मंजे को हिलाया, ये बड़ा महापुरुष होगा। और बार बार मंजे पर बैठना चाहते हैं, कहते हैं बेटा थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, एक गद्दी तुमको पिता को मिलना है, थोड़ा धैर्य रखो, इतनी जल्दी क्या है, ये गद्दी तुम्हारी ही है लेकिन ये पिताजी को लो तुमको मिलना है। सारी भविष्यवाणियाँ साहेब श्री गुरु अमरदास जी ने पहले ही कर चुके थे। एक समय की बात है कि अंगीठी जल रहा था और साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी बच्चे ही थे, वो बार बार रिड़क करके अग्नि की तरफ जा रहे हैं हाथ पाने के लिए। बीबी भानी जी बार बार गोद में लेकर के पीछे करते हैं, फिर जाता है, फिर जाता है, अंत में गोदी में चुप करके बीबी भानी जी लेके जाते हैं, वो बड़े ऊंचे ऊंचे रोने लग पड़े। गुरु अमरदास जी पूछने लगे कि क्यों बच्चे को रुला रही, कहते हैं पिताजी मैंने रुलाया नहीं बच्चे को, ये बार बार अग्नि पकड़ने के लिए जा रहा है, मैं तो उसको जो है सिर्फ मना करती हूँ और चुप करके जो है सो गोदी में ले ली हूँ मैं। कहते हैं उस वक्त साहेब श्री गुरु अमरदास जी की समाधि लग गई, अगमी सोच में चले गए। बीवी भानी जी वहाँ खड़ी रही, देखती क्या है, हमारे पिताजी चुप होकर के शांत होकर के आँख बंद करके कोई समाधि में चले गए। कुछ देर के बाद पूछती है बीवी भानी जी, पिताजी क्या सोच रहे हैं, क्या अगम्य सोच में आप चले गए हैं। वहाँ पर गुरु अमरदास जी भविष्यवाणी करते हैं, पुत्री तुमको पता नहीं है, ये जो बालक है गुरु अर्जन, इसका अग्नि के साथ बहुत बड़ा रिश्ता है, ये अभी से अभ्यास कर रहा है, एक समय आएगा कि जलती हुई जगत को जो है सोए आप इस पर बैठ करके जगत के तपती हुई प्यास को बुझाएगा। साध संगत जी, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी बड़े हुए और साहेब श्री गुरु रामदास जी योग्य समझ करके इनको गद्दी सौंप दिए और आप ज्योति ज्योत समा गए। जब साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रूप में संसार में प्रकट हुए तो साहेब श्री गुरु रामदास जी श्री अमृतसर नगरी को बसाए हैं, लेकिन जो हरमंदर साहेब है ये साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने बनवाए, श्री तरन तारण साहेब और जो करतारपुर साहेब जो जलंधर के रास्ते में है ये भी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की देन है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी का लड़का साहेब श्री हरगोविंद साहेब जी जब बड़े हुए तो पुरोहित ने चंदों की लड़की के साथ रिश्ता करके आए। गुरु अर्जन देव जी महाराज को जब बताया, क्योंकि पहले जो पुरोहित लोग होते थे वही शादी का रिश्ता वगैरह करते थे, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं चलो ठीक है, जो किया ठीक है। जब जाकर के चंदू को बोला कि चंदू जो है सो जहांगीर का मंत्री था, वजीर था वो कहता है कि चुबारी के ईंट को तुम मोहरी में ले लाया है। उसका कहने का भाव ये था, यह अपमान सब जनक शब्द उसने बोला, अपने को बड़ा समझता है वो, और गुरु अर्जन देव जी महाराज को थोड़ा नीवा जैसा। जब ये सिखों ने ये सुना, ये अपमान जबत शब्द शब्द, तो रहा नहीं गया। ये गुरु महाराज को लोगों ने, सिखों ने कहा, महाराज वो तो बहुत बड़ा अहंकारी है, वो ऐसा शब्द बोला, आप दया करो, कृपा करो, ये रिश्ता जो है सो इनकार कर दो। सिखों के बेनती सुन करके गुरु महाराज ने रिश्ता इनकार कर दिया। उस वक्त से चंदू जो है बड़ा खार खाने लगा, बहुत खार। साध संगत जी, जहांगीर खुद अपने किताब में लिखा है, अपने जीवनी में, जहांगीरी में, कि एक गुरु अर्जन देव नाम का हिंदू, ऐसे ठीक ऐसे ही लिखा है उसमें, एक गुरु अर्जन देव नाम का हिंदू जो गुरु बना बैठा है, वो अपना धर्म का दुकान चला रहा है, और कुछ भोले भाले हिंदू और भोले भाले मुसलमान, ये इनके शागिर्द बनते जा रहे हैं, और इस दुकान को बंद करना बहुत ज़रूरी है, यदि नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मुसलमान हिंदू सब इसके मुरीद बन जाएंगे। ये अपने जहांगीरी में पुस्तक में इसने लिखा है। कहते हैं कि जहांगीर ने जब साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को बुलाए, कहते हैं ऐसा करो, मुझे पता चला है कि तुमने एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में मोहम्मद साहेब का सिफत सलाह लिख दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि यह तो इलाही वाणी, खसम की वाणी का वो ग्रंथ है, इसमें और किसी की वाणी लिखी नहीं जा सकती, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला वाहिगुरु का सिफत साला है, और किसी का सिफत साला नहीं हो सकता। कहते हैं अच्छा, तो फिर तुम इस्लाम कबूल कर लो। कहते हैं यह भी नहीं हो सकता। कहते हैं यदि ये नहीं हो सकता तो फिर तो तुम जो है तत्ती तवी पर बैठने बैठाया जाएगा, तुमको शहीद किया जाएगा। कहते हैं कि उसी वेले वो कहते हैं हमें ये मंजूर है, और साध संगत जी उस वक्त बहुत ही बेदर्दी से, सबको पता है इस जेठ की धूप में जो है उसको हुक्म किया गया साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ती तवी पर बैठाए, पहले पानी में उबाला गया, ऊपर से भड़भुंजा गरम गरम रेता जो है सो उनके सिर पर डाल रहा है, और बाद में सिर के ऊपर रेता डाल रहा है। कहते हैं एक कवि ने बोला है, मोहसिन फानी हुआ है, वो बताता है कि मेरी सदा सदा, कहते हैं आवाज़, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। जो ये सारा माहौल चेंज हो रहा है ऐ जहांगीर, उसको कौन रोकेगा। मेरी सदा सदा, कहते हैं आवाज़ को, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। आपकी आह ने फसीले बुलंद तो सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों के परवाज रोकने वालों, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ, ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜਬ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਅਨਿਆਏ ਕੋ ਔਰ ਚਾਰ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੜੇ, ਚਾਰੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜੀਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇ ਇਹ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਕਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।